ये आकाशवाणी है। अब आप फरहतनाज से समाचार सुनिए। आज मानवाधिकार दिवस मनाया जा रहा है। प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकारों के संबंध में संयुक्त राष्ट्र की घोषणा के संदर्भ में मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र आम सभा ने वर्ष 1948 में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया और लागू किया था। इसे संपूर्ण विश्व में मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए साझा मानक मानदंड के रूप में अपनाया गया। इस वर्ष का विषय है हमारे अधिकार हमारा भविष्य अभी। ये उस विश्वास को और मजबूत करता है कि मानवाधिकार महज एक आकांक्षा नहीं है बल्कि बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए व्यक्तियों और समुदायों को सशक्त बनाने का व्यवहारिक साधन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में मानवाधिकार दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की ओर से आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करेंगी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कहा है कि इस वर्ष मानवाधिकार दिवस के कार्यक्रम के बाद एक दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन होगा जिसका विषय है मानसिक सेहत कक्षा से कार्यस्थल तक तनाव से निपटना। ये भी कहा गया है कि मानवाधिकार आयोग के गठन के बाद से अब तक मानवाधिकार के उल्लंघन के 23 लाख से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं और पीड़ितों को लगभग 256 करोड़ रूपये की सहायता की सिफारिश की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं में वित्तीय साक्षरता और बीमा जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा के पानीपत में कल बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया। भारतीय जीवन बीमा निगम की इस पहल से 18 से 70 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं को सशक्त करने में सहायता मिलेगी। प्रधानमंत्री ने भावी बीमा सखियों को नियुक्ति प्रमाण पत्र भी वितरित किए। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में महिला सशक्तिकरण के लिए अभूतपूर्व कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री ने करनाल में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर की आधारशिला रखी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने इस अवसर पर कहा कि सरकार ने बीमा सखी योजना के अंतर्गत 3 वर्षों में 2 लाख से अधिक महिलाओं की भर्ती का लक्ष्य रखा है। उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत 10वीं पास महिलाओं को प्रशिक्षण और पहले 3 वर्ष मासिक भत्ता भी दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2024 के ग्रैंड फिनाले में युवा नवोन्मेषकों से बातचीत करेंगे। ग्रैंड फिनाले में 1300 से अधिक छात्रों की टीम हिस्सा लेंगी। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि निर्माणाधीन नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उत्तर प्रदेश में यातायात संपर्क को मजबूत करेगा और इससे लोगों को काफी आसानी होगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि आम लोगों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले बुनियादी ढांचे का निर्माण हो और वे समृद्धि बढ़ाने के लिए संपर्क सुविधा की शक्ति का लाभ उठा सके। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर कल पहला विमान सफलतापूर्वक उतारा गया। दिल्ली से ये उड़ान कल 1:30 बजे दिन में पहुंची। विमान में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अधिकारी और तकनीकी विशेषज्ञ सवार थे। हवाई अड्डों की तैयारी के परीक्षण की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम था। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और राष्ट्रीय विविध सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति बीआर गवई ने कहा है कि इस वर्ष 3 राष्ट्रीय लोक अदालतों में 7,70,00,000 से अधिक मामले निपटाए गए। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण वर्ष में 3 बार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करता है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में अन्य विधिक सेवा प्राधिकरण जरूरतमंद लोगों को निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करते हैं। न्यायमूर्ति बीआर गवई का पूरा साक्षात्कार आज शाम 7:10 पर आकाशवाणी के विशेष कार्यक्रम सुर्खियों में प्रसारित किया जाएगा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कल विभिन्न मुद्दों पर कई बार व्यवधान के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सदन में एक व्यापारिक समूह पर कथित रिश्वतखोरी के आरोपों और कांग्रेस नेताओं के एक प्रमुख अमरीकी संस्था के साथ कथित संबंधों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हंगामा हुआ। लोकसभा में कांग्रेस डीएमके और अन्य विपक्षी दलों ने इन मुद्दों पर हंगामा किया। उधर राज्यसभा में भी हंगामे से कार्यवाही में बाधा आई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि सरकार का 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में 11 से 26 दिसंबर तक राज्य भर में जन कल्याण पर्व मनाया जाएगा। डॉक्टर मोहन यादव ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि इस अभियान के अंतर्गत युवाओं महिलाओं किसानों और गरीबों के विकास और कल्याण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।